This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. The latest pandemic numbers make for an all too familiar story. Here in the U.S., almost 1.5 million infection cases with more than 87,000 deaths. Worldwide, the coronavirus has sickened more than 4.5 million people. Fatalities top 308,000. The figures are from Johns Hopkins University. U.S. President Donald Trump has again blamed Barack Obama for any shortcomings in how the White House has handled the pandemic. Mr. Trump, earlier this weekend, repeated the refrain that he inherited a broken system. Spokesperson Kayleigh McEnany mocked an Obama administration pandemic plan, claiming the Trump team had conducted a number of planning exercises and wrote a pandemic warning in 2018. She said the administration's response to the health emergency has been unprecedented. Critics might agree, though their take is that it has been unprecedentedly bad. Former Obama aide Beth Cameron says the White House made a mistake not using Mr. Obama's pandemic playbook as a starting point. The U.S. Food and Drug Administration is suggesting a rapid COVID-19 test might be inaccurate. The White House medical team has been giving the Abbott Labs test to President Trump and top staffers every day. Asked if he had concerns, President Trump said Friday it was a great test and that results could always be double-checked. The Democratic-led U.S. House of Representatives wants to pump more aid dollars into the crippled American economy. It has passed a $3 trillion measure, more than the combined total of four earlier aid packages. But the bill faces a partisan battle. Only one House Republican voted for it, and early reaction in the GOP-led Senate has been just below lukewarm. Republicans call it a bloated Democratic Party wish list, and President Trump has threatened to veto the measure as written. Meanwhile, the House has approved a proxy voting measure, meaning members can soon cast votes on legislation from home because of pandemic fears. The move flies in the face of President Trump's wish for Americans to get back to their workplaces. The Capitol position says it could be years before Congress resumes full operations. This is VOA News. American states are adopting a wide variety of plans to lift stay-at-home orders and get their economies up and running. This, as an Associated Press survey finds, that 41 of the 50 states fall short of COVID-19 testing levels that experts say are necessary to avoid another wave of infections. Many of those states, including Texas, with its 29 million people, are moving aggressively to get businesses ranging from beauty shops to shopping malls to reopen. President Trump's current public line on tests is that they may be overrated. In South Korea, the government says a new major outbreak of COVID-19 has apparently been averted. They point to the 46,000 tests done after 162 infections were traced to nightclub goers in Seoul. Testing has been a key in South Korea's pandemic response. Its official death toll is only 262, despite a caseload of 11,000. India this weekend is set to announce if it plans to extend its two-month coronavirus shutdown. India suffered about 86,000 cases of COVID-19 as it surpasses China. India's death toll stands at 2,752. Mexico has become a new virus hotspot. The number of new confirmed cases once again on Friday exceeded 2,000, pushing the caseload above 45,000. As the death count in Mexico moves toward 4,800. President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, says Mexicans have to be more careful, that this is no time to relax discipline. Air Canada says it will lay off at least 20,000 of its 38,000 employees effective June 7th. Canada's largest air carrier says it has reduced flights by 96%. The iconic JCPenney department store chain has declared bankruptcy. While the 118-year-old American business had long been in economic distress, the loss of revenue because of the pandemic proved to be too much for the debt-ridden company. Penny is the largest American retailer to go under during the pandemic and joins Neiman Marcus, J. Crew, and Stage Stores in its surrender to fiscal reality. U.S. retail sales were down a record 16.4% from March to April. Even with states ending their stay-at-home orders, more bankruptcies are expected. Autopsy results released in California show that the helicopter pilot flying former basketball great Kobe Bryant and seven others had no alcohol or drugs in his system when the chopper crashed in January. All nine people aboard died. One was Bryant's 13-year-old daughter, along with two of her basketball teammates. The senior deputy medical examiner in Los Angeles said the victims were probably killed instantly when the aircraft went down. It was traveling at nearly 200 miles an hour. More news online at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ آج کے اس پروگرام میں کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کے بارے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو امریکہ سے ہی آغاز کریں گے، نیو یارک شہر سے، جہاں سب سے زیادہ کیسز بھی ہوئے، سب سے زیادہ اموات بھی ہوئیں اور بہت سارے مسائل میں اس کا نام بھی آتا رہا۔ ڈاکٹر افتخار چیمہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیف پیتھولوجسٹ ہیں نیو یارک شہر کے 5 اسپتالوں کے اور ایک تجربے کار ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے پہلے بھی بہت سی مفید باتیں ہمیں بتائی تھیں۔ پوچھتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے، وہ بروکلن میں ایک اسپتال میں کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ کیسز تھے جس زمانے میں ہم نے ان سے بات کی، اور نیو یارک شہر میں مجموعی طور پہ بھی ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر محمد اختر شیما صاحب سے یہ کیا صورت ہے۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اب آہستہ آہستہ امریکہ میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب کئی جگہوں پہ تو ہوا ہی نہیں تھا اور کچھ اسٹیٹس میں مئی کے مہینے میں کھول دیا گیا، تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ جو اس طرح سے مختلف ریاستوں میں جو یہ ہو رہا ہے، تو اس سے صورتحال پہ کیا اثر پڑے گا کووڈ 19 کی؟
جی ابھی صورتحال یہ ہے کہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہے، ابھی پچھلے ہفتے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انفیکشن جو ریٹ ہے، جو لوگ آ رہے تھے ایمرجنسیز میں ان کی تعداد کم ہوئی ہے، پھر جو ہاسپٹلائز ہو رہے تھے ان میں سے ان کی بھی تعداد کم ہوئی ہے، اور پھر آگے جو وینٹیلیٹر پہ یا آئی سی یو میں جا رہے تھے ان کی بھی تعداد کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو اب اگر اپریل کے لحاظ سے دیکھیں، شروع کے اپریل میں، مڈ اپریل میں، تو پچھلے دو تین ہفتے سے آہستہ آہستہ کم ہو کے اب کوئی 25-50% جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو ویریبل ہے، یہ نیو یارک سٹی میں آپ کو پتا ہے یہ 5 باروز جو ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت ہی فرق ہے، یہ نیو یارک سٹی میں پوری جگہوں پہ جو ہے یہ کافی زیادہ اسپریڈ ہوا تھا۔ تو آلموسٹ جو فیگرز آ رہی ہیں وہ ایک جیسی آ رہی ہیں کہ ہر جگہ پہ آہستہ آہستہ کم ہو کے اب جو ہے بٹوین 25-50% پہلے کی نسبت یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فکر کی بات یہ ہے کہ اب یہ کم تو ہو رہا ہے، لیکن اب یہ لاک ڈاؤن جب ایک دم، تو یہاں کے جو گورنر ہیں کومو وہ بہت کیئرفل ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور وہ ابھی اتنی جلدی گرین ہی کر رہے کہ ایک دم کھول دیں، انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے ان کاؤنٹیز جو نیو یارک کی ہیں، جو اپ اسٹیٹ ہیں، ان کو کھولنے کا وہ اعلان کیا ہے۔ آدھا نیو یارک کی جو اسٹیٹ کی ہے، جو آدھا حصہ آپ کہہ لیں، جو کاؤنٹیز ہیں جو موسٹلی یہ ادھر جو ہے آپ نیاگرا فال کی طرف سے اگر شروع ہوں
جی، بفلو وغیرہ جو ہے،
جی ہاں، تو وہ اس طرف ذرا کم ہے، تو ان کو کھولنے کا پروگرام بنایا ہے اس نے مڈ مئی تک جو ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن نیو یارک سٹی میں ابھی تو کم تو جیسے میں بتا رہا ہوں ہو رہا ہے، اتنا کم نہیں ہوا کہ اس کو اوپن کر دیا جائے، کیونکہ فکر اس بات کی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں وہ جب نکلیں گے تو پھر سرچ ہوگا، اور یہ فکر ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے ہماری اتنی زیادہ، جو ہم پہلے ہی جو ہے وہ مشکل میں تھے پیشنٹس کو سنبھال سکیں اور پھر ان کو ایڈمٹ کر سکیں، اور بیڈ اتنے ہیں یا ہمارے پاس وینٹیلیٹر اتنے ہوں گے کہ ہم جو ہے اگر سرچ ہوتا ہے ایک دم جو ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو انہیں پھر ہم کنٹرول کر سکیں گے کہ نہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب آپ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پابندی کتنی ہے لاک ڈاؤن کی، لوگ کس حد تک پابندی کر رہے ہیں نیو یارک میں؟
یہاں پہ نیو یارک میں تو ریلیٹیولی ہمیں کافی جو ہے، اگر باہر بھی جائیں یا آپ پہلے تو ہاسپٹل میں دیکھیں تو کافی اس پہ عمل ہوتا ہے، ہم لوگ ماسک پہنتے ہیں، اور باقی یہاں پی پی، اب پی پی کی جو ہے چونکہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو گئی ہے، کچھ اور آ بھی گئے ہیں، کچھ ڈونیٹ بھی مل گئی ہیں، تو صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے۔ اب جو باہر دیکھا جائے عام پبلک میں بہت کانشیس ہیں لوگ یہاں پہ، ریلیٹیولی تو نیو یارک میں لوگ جو ہیں وہ کافی نظر آتا ہے کہ عمل کر رہے ہیں، اگنور نہیں کر رہے، بہت کانشیس ہیں لوگ، تو اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب تھوڑا اوپن ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہے ہوتی ہے، اس کو پھر اب اس کی فکر ہے کہ کیا یہ کنٹینیو رہتا ہے اسٹرکٹلی کہ نہیں، ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے۔
اچھا، تو آپ کیا ایک مطلب مجموعی تعداد متاثر ہونے والوں کی، یعنی جو پازیٹیو تھے، جو ہلاک ہوئے اور جو صحت مند ہوئے، وہ کیا ہے؟
جو ایڈمٹ ہوتے ہیں اس میں تو جو آگے چلے جاتے ہیں آئی سی یو میں، پھر آگے جو وینٹیلیٹر میں جاتے ہیں، وہ تو بہت ان کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے کافی ہائی ہے، کوئی 50% کے قریب جو ہے وہ پھر उनकी डेथ हो रही है. हमारे पास जो है बहुत सारी बॉडीज थी, बहुत सारे वो गवर्नमेंट ने फिर वो बड़े से ट्रेलर ला के दिए थे, उनमें बॉडीज रख रहे थे. अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका भी उन्होंने अरेंज कर रहे हैं, वो बॉडीज लेके जा रहे हैं. तो गवर्नमेंट खुद अपने जो है कंट्रोल में रखेगी, खुद संभालेगी जब तक वो लोग जो है उसको क्लेम नहीं करते या अरेंजमेंट नहीं होता. तो हमारे पास बहुत ज्यादा ये प्रेशर था कि इनको हम कैसे जो है संभालें.
आपके हॉस्पिटल में या पूरे न्यूयॉर्क में ये प्रेशर था?
नहीं, पूरे न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में ये बात है, इंक्लूडिंग माई हॉस्पिटल. लेकिन सारे जितने हॉस्पिटल है उनकी जो सिचुएशन है वो एक जैसी थी कि वहाँ पे ट्रेलर्स दिए हुए थे गवर्नमेंट ने, दो दो तीन तीन तो बॉडीज उसमें रख रहे थे, क्योंकि वो मार्ग में तो इतनी कैपेसिटी होती नहीं है. तो हमारे पास कई हंड्रेड के लिहाज से जो है बॉडीज थी. वो फिर अब तो जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं वो भी कम हो रहे हैं, और आगे फिर जो जिनकी डेथ हो रही है वो भी कम हो रहे हैं. तो काफी फर्क पड़ रहा है. लेकिन स्टिल द इश्यूज नॉट यू नो कंप्लीटली रिजॉल्व्ड. आई थिंक ये अभी कुछ दो तीन हफ्ते तक लगता है कि ये और लगेंगे इसको काफी नीचे आने में जाए.
तो डॉक्टर साहब, मुझे ये जो बॉडीज वाली बात है, ये इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि क्या लोगों के साथ कोई उनके लवाइकी नहीं है, यानी उनके कोई अजीज रिश्तेदार नहीं रहते साथ? ये किन लोगों की लाशें हैं जो कि कोई क्लेम नहीं कर रहा, कौन है वो लोग?
इसमें मिक्स्ड लोग हैं. कुछ तो जो है वो फ्यूनरल डायरेक्टर, यहाँ पे सिस्टम है पता, जो लोग खुद से तो आके नहीं लेके जाते बॉडीज जो है, जो फ्यूनरल होम्स हैं उनके जो मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जिन्हें फ्यूनरल डायरेक्टर कहते हैं, वो लेके जाती हैं हॉस्पिटल से बॉडीज. वो नहीं थे विलिंग के बॉडीज लेके जाएं, और उसकी वजह यह है कि कुछ जो वारिस हैं वो भी इतना उनको पुश नहीं कर रहे थे उस फ्यूनरल डायरेक्टर को कि बॉडीज लेके आए नहीं था, क्योंकि सारे लोग केयरफुल थे कि अब क्या करें. तो इसलिए बॉडीज जो है ज्यादातर वो हॉस्पिटल में पड़ी रही है. समझे वो जो ट्रेलर थे वो उनका टेम्परेचर काफी डाउन था, तो वो फ्रीजर की तरह थे, बड़े बड़े समझे कि ओपन फ्रीजर, तो उसमें बॉडीज रखी थी रैप करके जो है. ऐसा कुछ तो वो लेके गए हैं, फ्यूनरल डायरेक्टर्स भी लेके गए हैं, उन्होंने लिमिटेड जो है वो रिकमेंड किए हैं. लेकिन अभी तक मैस लेवल पे जो है इसका फ्यूनरल के अरेंजमेंट नहीं हो सके हैं. ऐसा गवर्नमेंट ने ये अरेंज किया है कि वो ट्रेलर से भी जो है एक बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा समझे कि वो बना फ्रीजर मार्ग जो है बिल्डिंग में, तो अब उसमें सारी जमा कर रहे हैं कि जब तक जो है वो लोग आगे क्लेम ना करें या वो गवर्नमेंट जो है न्यूयॉर्क सिटी की वो उसको स्टोर करके रखेगी.
अच्छा, मैंने पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ भी बात की तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग ये समझें कि कोरोना वायरस से जो हलाक होने वाला शख्स है मरने के बाद भी उसकी वजह से जरासीम फैलेंगे या इन्फेक्शन दूसरे लोगों को लग जाएगा. क्या इसमें हकीकी सूरत हाल क्या है?
नहीं, इसमें एहतियात की तो जरूरत है. पहले तो बात यह है कि जो बॉडीज हैं उनको रैप अच्छी तरह रैप करना होता है प्लास्टिक के, जो वो भी जो है उसमें ये मसला था कि डबल पैक करने पड़ रहे थे, क्योंकि वो प्लास्टिक के हैं, वो जरा सी भी थोड़ा बहुत इसके लगे तो वो फट जाते थे. और जो ये बॉडीज हैं इनके फ्लूइड भी होता है, वो फ्लूइड जो है वो लीक करता है, तो वो बॉडी फ्लूइड जो है वो उसमें पॉसिबिलिटी तो होती है कि वो वायरस हो, चाहे बॉडी डेड है, लेकिन ये है कि वो खुद तो नहीं फैला सकता बंदा जो है सांस के जरिए, लेकिन उसके जो बाकी फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है. तो इसलिए एहतियात की जरूरत है, पूरा जो प्रोटोकॉल है इसको करने का, कि पूरा एक तो पीपीई जो है पूरे हिफाजती इकदाम, पूरे बंदा जो है जो हैंडल कर रहा हो वो उसने पहने हो, और बॉडीज को सिक्योर किया जाए लीक ना हो, और फिर उसको जब फ्यूनरल भी करना है उसके भी प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट ने सीडीसी ने इशू किया हुआ है, इनको हदायत दी है फ्यूनरल डायरेक्टर को हाउ टू हैंडल द बॉडीज. तो एहतियात की जरूरत है, ये नहीं कह सकते कि बाबा ये बॉडी डेड है तो उससे वायरस नहीं लगेगा. ये तो एक जनरल वो असूल है कि जब भी आप किसी बॉडी फ्लूड को हैंडल करें तो आप उसको ऐसे ही हैंडल करेंगे जैसे उसमें इन्फेक्शन है.
तो डॉक्टर साहब, ये जो गाइडलाइन है उसमें क्या मुख्तलिफ मजाहिब के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइन है या एक ही है?
नहीं, हमारे पास जो है वो अगर अगर तो बॉडी कोई क्लेम करता है आके ले जाता है तो वो तो फिर हम दे देते हैं ना. वो तो अगर वो मुसलमान जो है हमारे मुस्लिम वो लोगों ने अरेंज किए हैं बॉडीज, वो लेके गए हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, वो जो है इतना ज्यादा वो डिपेंड नहीं करते फ्यूनरल डायरेक्टर पे जो है मुसलमान लोग हैं। यहाँ पे मुस्लिम फ्यूनरल होम्स हैं न्यूयॉर्क में, और वो मुझे पता है कि वो जो है बिलिंग है अभी लेके जाने में और उनको दफनाने में वो लोग जो है वो हेल्प कर रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो अमवात हुई है और जो लोग मुस्बत पाए गए वो सियाह फाम अमरीकी हैं, और उसके बाद गालबन स्पेनिश और फिर वाइट, तो अभी भी नंबर वही है।
हाँ, क्योंकि ये ओवरऑल जो है, एक तो इसके बहुत सारी रीजन है, इसकी सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी बहुत सारी हैं, और फिर जनरली हमें सबको पता है कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है इनमें हाइपरटेंशन ज्यादा है, अस्थमा भी ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट भी ज्यादा है, इनमें जो रेट है वो ज्यादा है। तो एक तो ये फैक्टर है कि जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं वो ब्लैक्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जो वाइट है, और हिस्पैनिक में भी ज्यादा है। फिर दूसरा ये है कि ये चूंकि एक सोशियो इकोनॉमिक होने की वजह से ये लोग जो है ज्यादा क्राउडिंग इनमें ज्यादा है, और फिर वो ज्यादा एक्सपोज जो लोग हुए हैं जल्दी से स्प्रेड ज्यादा हुआ है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो ये एक तो अंडरलाइन कंडीशन जो है मेडिकल वो इनमें ज्यादा है, दूसरा ये है कि ड्यू टू पोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक्सपोजर रेट जो है वो ज्यादा हुआ है। तो अभी भी ये यही सूरत हाल है जी।
न्यूयॉर्क के हवाले से मैंने खबर पढ़ी थी कि जो यंग लोग हैं कोरोना वायरस उनमें स्ट्रोक की शक्ल में सामने आता है, इसकी क्या वजह है?
अच्छा, इसकी वजह यह है कि अभी तो अब हमारे जो हैं वो हमें अटॉप्सीज जो है कुछ उसकी भी इंफॉर्मेशन मिली है, और जो लिमिटेड अटॉप्सी स्टडीज हैं वो आई हैं, और बाकी जो जो मेडिकली जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ जो जो ट्रीट कर रहे हैं उनके साथ भी, तो इसमें ये जो वायरस है ये लंग्स में तो शुरू होता है, फैलता है, फिर जाके ये लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्मॉल ब्लड स्मॉल बिल्कुल छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उन उसमें थ्रोम्बोसिस उसका होता है, यानी उस वो जो है ब्लॉक हो जाती है, ब्लड जो है उसमें जम जाता है, छोटी जो ब्लड वेसल्स की जो है ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से वो जो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये ऑर्गन जो है बाकी ऑर्गन्स को भी इसी तरीके से कुछ अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा जो है ये लंग्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको उसमें ये ब्लड जैसे स्ट्रोक इसलिए होता है ना कि उसकी ब्लड जो है जम जाता है। तो लंग्स में तो ये अटॉप्सी स्टडीज हैं, लेकिन ब्रेन में भी जो है इसका इफेक्ट इस तरीके से लगता है कि ये हो रहा है, किडनी में भी जो है ये इस तरीके से हो रहा है, हार्ट में भी जो है ये हो रहा है, और जो जो इंटेस्टिन है लोगों को, कई लोग जो है उनको तो सिर्फ ये डायरिया ही होता है और बाकी सिम्टम्स नहीं होती। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इसमें खून जो है वो थोड़ा जो छोटी ब्लड वेसल्स उसमें जम जाता है, तो वो स्ट्रोक की सूरत हाल भी हो रही है, लंग्स में जो है वो भी ये जो सिम्टम्स हैं इसकी आ रही हैं, और बाकी ऑर्गन में भी ये आ रही हैं। तो अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है अब ये काफी लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि ये जो ब्लड थिनर हैं ये साथ देना होंगे, अब ये देना उन्होंने शुरू कर दिए एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, ताकि ब्लड जो है वो जम ना सके।
तो ये सिर्फ नौजवानों में या हर उम्र के लोगों में?
नहीं, ये तो सब में है, सिर्फ नौजवानों में नहीं, ये तो ये पूरी जितने भी लोग हैं उसमें ये काफी हद तक जो है ये जो ज्यादा सीरियस लोग जो हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं कि ये जो है फिर ब्लड वेसल्स में वो ब्लॉक हो जाती है जब खून जम जाता है उसमें जो है।
तो डॉक्टर साहब, ये जो जाहिर है कि अभी तक तो तजर्बाती तौर पे मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन क्या अब किसी नतीजे तक पहुंचे हैं कि सबसे ज्यादा मुफीद कौन सी दवाएं हैं?
इसमें मेरे ख्याल से एक चीज एक आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है सिर्फ ये ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन है ना वो कंसिडर की जा रही है। एक तो आपने जो है कन्वर्सेड प्लाज्मा का सुना होगा कि ये जो कन्वर्सेड प्लाज्मा ये है कि जो जो लोग कोरोना इन्फेक्शन हुआ था वो ठीक हो गए, और उसमें जो है उनके खून में जो है वो कुदरती तौर पे एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर जो है वो लोग ब्लड दें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में होती है खून का जो वाटर पार्ट है, तो वो अगर दिया जाए तो ये है एक उम्मीद के वो लोग जो हैं उनको वो एंटीबॉडीज हैं वो मिलेंगी तो वो फाइट कर सकेंगे। इसमें भी जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड आ रहे हैं, हमने खुद अपने हॉस्पिटल में जो है काफी लोगों को ये दिया है, तो नॉट रियली वेरी इफेक्टिव, मिक्स किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब ये है कि साथ जो है वो वायरस की अभी जो उन्होंने अलाउ किया है रेमडेसिविर जो है एंटीवायरल ड्रग जो है वो उन्होंने कहा है कि ये इसके इफेक्ट आ रहे हैं। दूसरा फिर ये जो एक और ड्रग जो है जिसको इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट जो है, क्योंकि इसमें ये सारा मैकेनिज्म जो है जिससे ये पूरी डिजीज हो रही है वो एक इंटरल्यूकिन 6 हार्मोन है वो निकलता है और वो भी इफेक्ट करता है काफी ना ये सारे इसके ऑर्गन जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन ऑलरेडी है वो भी कह रहे हैं कि वो दें तो इफेक्ट हो सकता है होगा, लेकिन आप एक मेडिसिन जो है वो नहीं कह सकते कि ये इफेक्टिव है। तो गवर्नमेंट ने भी काफी जगहों पे जो है वो सेंटर्स बनाए हैं टेस्टिंग के,
वेंटिलेटर वगैरह सब है अब आपके पास।
अभी तो यानी यह है कि अब आहिस्ता वो अवेलेबल होना शुरू हो गया, उसका तो अब इतना ज्यादा मसला नहीं रहा।
तो इसकी वजह लोगों की तादाद में कमी है या ये कि वेंटिलेटर मिल गए आप लोगों को काफी?
नहीं नहीं, लोगों की तादाद में कमी हुई है, एक्स्ट्रा वेंटिलेटर तो कोई नहीं आई, लेकिन यह है कि जो पेशेंट्स जो थे जो एडमिट हो रहे थे जो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे उनमें कमी आई है।
अच्छा,
और जो आगे वेंटिलेटर में फिर ज़ाहिर अब कम जा रहे हैं तो अब ऐसा ऐसा वेंटिलेटर्स अवेलेबल हो रहे हैं।
तो अब अगला इसके बाद इस क्या नजर आ रहा है आपको मरहला के अगला मरहला कब होगा अगर ये अब कम होना शुरू है तो? वो कौन सी स्टेट्स हैं अमेरिका में जहां आपको समझते हैं कि वो, क्योंकि अभी तक पीक नहीं हुई वहां पे तो वहां पर तादाद बढ़ेगी?
मेरे पास अब तो ये कुछ स्टेट जो है खास तौर पे जो नॉर्थ में जो है ये मॉन्टाना वगैरह इस तरफ जो एरियाज हैं ये स्टेट्स हैं इनमें रिलेटिवली कम है तो वो लोग ओपन कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि बाकी जो कुछ और स्टेट्स हैं हालांकि वहाँ पे इतना कम नहीं हुआ, जैसे जो है अपने जॉर्जिया का सुना होगा और टेक्सास
वगैरह
कैलिफोर्निया भी ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा खोलें, तो वहाँ पे वो सूरत हाल तो नहीं रही है जो न्यूयॉर्क में हुई थी या न्यू जर्सी में, लेकिन वहाँ पे अब लगता यह है कि छत बढ़ नहीं रहा, कुछ स्टेबल हो रहा है। मेरा ख्याल तो ख्याल से थोड़ा सा जो है और इनको हफ्ता दो हफ्ते और वेट कर लेना चाहिए था ताकि जो है जरा और तसल्ली हो जाती कि वाकई जो है वो कम हो रहा है। फिक्र यही है कि प्री मेच्योरली जो है वो ओपन करके फिर ये सर्ज ना हो। सही तरीके से अगर ये करते हैं जो प्लान देते हैं अगर लोग अमल करते हैं तो फिर देखें अल्लाह करे कि अब वो दोबारा सेकेंड सर्ज ना हो, लेकिन देखने में तो आता है कि लोगों को आप छुट्टी दें तो फिर लोग जो है पार्कों में भी बीचेस में भी काफी लोग जो है जमा हो रहे हैं और बहुत रश लग रहा है। ये कुछ जो है अभी इमेजेस आपने देखी होंगी कुछ जहाँ पे उन्होंने ओपन बीचेस की थी तो लोग जो है वो बहुत काफी तादाद में आ रहे हैं। डर यही है कि कहीं पे ये फिर से ना हो जाए, एहतियात की जरूरत है जी बहुत ज्यादा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार। तो सामिन ये थे डॉक्टर इफ्तिखार चीमा और मुझे उनकी बातें सुनते सुनते याद आ गया पाकिस्तान में जहाँ भी तस्वीर देखती हूँ एक रावलपिंडी की तस्वीर थी तो लोगों का एक हुजूम था और बगैर किसी एहतियात के लोग साथ साथ बैठे थे या चले जा रहे थे या शॉपिंग कर रहे थे। तो ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान में तो उस तरह की हिफ्ज़ान सेहत की ना तो सहूलतें हैं ना हर एक की एक्सेस है। कोशिश ये करें कि इस वायरस को जिस हद तक मुमकिन हो फैलने से रोका जा सके। तो चलिए अब एक छोटा सा प्रोमो फिर अगला मौसम।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
सामिन COVID-19 के बाद अब चलते हैं अमरीकी सियासत की तरफ, लेकिन उस पर भी ज़ाहिर वायरस की बात उस दौरान भी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए कोरोना वायरस से मुतासर मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि इस मुकाबले में कामयाब होने के लिए दोनों उम्मीदवारों को बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस से निमटने का तरीक़ाकार है। इस बारे में सबा शाह खान की रिपोर्ट।
मईशत को खोलने के लिए होने वाले मुजाहिरों और दबाव के दरमियान इस वक्त भी जबकि COVID-19 से इन्फेक्शन और अमवात जारी हैं, मजीद रियासतें आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबारों को दोबारा खोल रही हैं।
इसका ताल्लुक توازن سے ہے. ہمیں معیشت کو بحال کرنا ہے لیکن ہمیں لوگوں کی حفاظت بھی جاری رکھنا ہوگی.
کئی ہفتوں میں پہلی بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے سلسلے میں صدارتی انتخابات کے لیے اہم ریاستوں ایریزونا اور اوہایو کے سفر کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سخت مقابلے والی ریاستوں میں رائے عامہ کے جائزے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ سے آگے دکھا رہے ہیں. ٹرمپ کی COVID-19 کے بحران سے نمٹنے کا طریقہ کار اور خاص طور پر پریس بریفنگ کے دوران ان کے کچھ تبصرے متنازع رہے ہیں.
Who can you trust? آپ اس بکھیڑے سے نکلنے کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ صدر کرونا وائرس کو سنبھالنے میں کافی حد تک نااہل رہے ہیں.
ریپبلکنز معیشت کے حوالے سے صدر کی کارکردگی پر مرکوز ہیں.
ووٹرز اس وبا سے پہلے تک صدر کی معیشت کے لیے اقدامات سے مطمئن تھے اور اس بحران کے بعد بھی وہ انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو معیشت کو بحال کرے گا.
جہاں ٹرمپ کی انتخابی مہم ان کے پول نمبرز بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے, جو بائیڈن کو بھی ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے. جو بائیڈن کے سینٹ آفس کی ایک سابقہ ملازمہ نے ان پر تقریباً 30 سال قبل پیش آنے والی جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا ہے جس کی جو بائیڈن نے تردید کی ہے.
ایسا نہیں ہوا, انہوں نے پرزور طریقے سے کہا.
دونوں ہی کی مہم کو وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجز سے بھی نمٹنا ہے. سوال یہ ہے کہ سماجی فاصلوں کے اس دور میں کیا ایسے بڑے جلسے ممکن ہو سکیں گے؟
ہم ووٹرز کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے جب تک یہ مناسب نہ ہو.
مجھے امید ہے کہ ہم 25,000 افراد کی کچھ اچھی ریلیاں ہوتے دیکھیں گے جہاں ہر کوئی حب الوطنی کے جذبے سے دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے.
فی الحال اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے جبکہ ہر امیدوار آن لائن مہم چلا رہا ہے ایک ورچوئل دنیا میں. الزبتھ لی کے ساتھ صبا شخان, وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اب ہم چلتے ہیں ایک مختلف موضوع کی طرف. آپ میں سے جو ہمارے پروگرام باقاعدہ سننے والے معلوم ہوگا کہ یہاں امریکہ میں بڑا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے زمانے میں. نہ صرف یہ کہ لوگ اپنے انفرادی سطح پر گھروں میں افطاری اور سحری کا اہتمام ہوتا ہے بلکہ مساجد میں اور دوسرے مراکز میں بھی اجتماعی طور پر یہ انتظامات کیے جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ رمضان بڑا سونا سونا گزر رہا ہے کیونکہ آپ جمع نہیں کر سکتے لوگوں کو اور نہ اپنے گھروں پہ دعوت دے سکتے ہیں, نہ ہی لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں افطار کی. لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بہت سے جو لوگ جن کے وسائل کم ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایک وقت کا کھانا دشواری بن سکتا ہے اس صورت میں کہ ان کی روزمرہ کی جو اجرت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہو. تو ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, وہ کس طرح سے ان کو کھانا ملتا ہے, میں نے بات کی ہے طفیل احمد صاحب سے جو یہاں ریاست میری لینڈ کے مضافات میں رہتے ہیں. بہت ہی منفرد ہستی ہیں میں کہوں گی طفیل احمد صاحب. تعلق ہے ان کا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سے, اور اگر ہجرت کہہ لیں تو انہوں نے مطلب بچوں کو تو لے کر آتے ہیں والدین, لیکن انہوں نے اپنی بلوغت میں 2 دفعہ ہجرت کر چکے ہیں. ایک دفعہ الہ آباد سے پاکستان آئے اور اس کے بعد پاکستان سے پھر امریکہ آئے, اور ہر جگہ انہوں نے ایک نام کمایا اپنا. تو بات ساری ہے کہ صرف آڈٹ یا اکاؤنٹنگ تو کوئی کمال نہیں ہے. جس چیز کے لیے بات میں ان سے آج کرنا چاہ رہی ہوں وہ ان کا خیراتی کام ہے, خاص طور سے ان دنوں میں جب لاک آؤٹ ہے اور جب رمضان کا مہینہ ہے تو اس کام کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی ہے. تو چلیے بات کرتے ہیں طفیل صاحب سے.
یہاں پہ جب 2000 آیا 2000 میں ہمارے بچے سب بڑے ہو چکے تھے, تو انہوں نے کہا تینوں نے مل کر کے کہ ابا آپ نے ہم سب کے لیے بہت ہی کام کر دیا, اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی یو آر اونلی 64-65 ایئر اولڈ. ہم لوگوں نے کہا چلو بھائی, مسلمان لوگوں کو بڑا شوق ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا, لوگوں کو افطار کھلانے کا, ایسا کرتے ہیں کہ یہ افطار کا زمانہ ہے, رمضان شریف کا زمانہ ہے, تو چل کے کسی ہوملیس شیلٹر میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ یقین جانے وہ پہلا ایونٹ تھا ہمارا, 50 لوگ مسلمان آئے اس میں, اور $5,000 ہم نے جمع کیے اور جا کے 800 لوگوں کو کھانا کھلایا. ایک بہت بڑا سینٹر تھا جس میں 800-900 لوگ رہتے تھے, ہوملیس لوگ, 250-250 لوگ رہتے تھے ایک ایک فلور کے اوپر. تو तो हम खाना बना के तीन रेस्टोरेंट में खाना बनवाया 250-250 लोगों का, और वहाँ खाना जा करके उनको सबको खिलाया, बड़े खुश हुए सारे। और उसके बाद सब ने कहा कि भाई अब आप दोबारा कब आएंगे। मैंने कहा बेटा ये बार बार तो नहीं आ पाएंगे, इतना आसान नहीं होगा। 3-4 साल तक बराबर जाके वहाँ खाना खिलाया। फिर एक इंतजाम शुरू किया कि जो गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, होमलेस शेल्टर बहुत है हमारी काउंटी में, 7-8 शेल्टर है जहाँ पे 30 families, 50 families, 40 families बिल्डिंग है उसके अंदर रहते हैं, और उनको फ्री खाना प्रोवाइड होता है। तो इसमें हर किस्म के बूढ़े लोग भी होते हैं, जवान लोग भी होते हैं जो बेचारे छोटी छोटी तनख्वाहों पे मुलाजिम है। नलगुमरी काउंटी का एक शेल्टर हमें मिला जहाँ 35 औरतें रहती हैं, तो हम उनको खाना पहले साल में 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ता, अब साल में समझ ले 1 महीना उनको हम खाना खिलाते हैं। तो हर 3-3 महीने के बाद 1 हफ्ते में उनको खाना खिलाते हैं, और खाना जो है बढ़िया खिलाते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो वहां से हम खाना ले आते हैं, तो चिकन करी खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं, हमको खत लिख के भेजते हैं, सब साइन करके शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद फिर हमने कलेक्शन ऑफ फूड फॉर हंग्री पीपल करना शुरू किया। काम हमने शुरू किया मंटगोमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल के नाम से।
अच्छा।
जब हमने 2001 में जब ये धमाका हुआ 9/11 का, उसके बाद हम लोग मिले तो 2002 में मंटगोमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल बनाई, और 2000 उसके बाद हमने फिर ये ऐड किया कि खाना खिलाने के साथ साथ हमने फूड कलेक्शन भी शुरू किया कि साल में 2 दिन हम जाएंगे और ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़े होंगे, और हम कहेंगे कि हम मंटगोमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल को बिलोंग करते हैं और लोगों के लिए खाना जमा कर रहे हैं और हम इसको गरीबों में बांट देंगे। उसके बाद हम साल में 1 दिन हम अफ्तार में, काउंटी ने डिक्लेयर किया हुआ है अफ्तार के 1 दिन मुसलमानों का दिन रमजान में डिक्लेयर किया हुआ है, उस दिन हम काउंटी में इफ्तार के डिनर का इंतजाम करते हैं। हम यानी मंटगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन और मंटगोमरी काउंटी मुस्लिम काउंसिल, हम दोनों मिल करके इफ्तार करते हैं। करीब 450 लोग हाल के अंदर जमा हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को भी बुलाते हैं, एक अच्छा फंक्शन हम करते हैं, खाना बढ़िया खिलाते हैं, और उसके बाद खत्म हो जाता है। काउंटी एग्जीक्यूटिव और सारे जो बड़े बड़े लोग आते हैं बोलते भी हैं, 1 घंटा बोलते भी हैं, हम लोग भी उसमें प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोग्राम।
फंडिंग अभी तक 1,93,000 है या उसमें इजाफा हो गया?
नहीं, 1 लाख जो है वो हमें स्टाफ के लिए मिलता है, 50,000 हमको मिलता है, बिल्डिंग का किराया $4,000 महीना है तो वो देते हैं, तो इस तरह से 1,50,000 के करीब इसमें निकल जाता है, तो 40,000 हमें और मिलता है। वो 40,000 और प्लस 1,40,000 हम अपने पास से मिला करके खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च करने में मेजर हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं? नंबर वन, हम वो करते हैं, कुर्बानी करते हैं, $23,000 जमा करते हैं हर साल, और उसमें पिछली मर्तबा 17 गाय के पैसे हमें मिले थे, यानी 7-7 हिस्से होते हैं एक एक गाय के, तो करीब 130 के लोगों ने हमें चंदा दिया था कि आप हमारी तरफ से कुर्बानी करा दें। तो हमने लोगों से कहा कि बेटा कुर्बानी करके गोश्त लाके फ्रिज में रख लेते हो और खा लेते हो, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं गरीबों में बांट देते हैं। तो तैयार हो गए लोग, तो हमने एक पहली मरतबा हमने एक गाय जबा की थी 7 लोगों ने, और 500 पाउंड गोश्त एक गाय का निकला था, करीब मतलब है कि एक एक गाय में करीब 70 पाउंड या 60 पाउंड का हिस्सा होता था। तो वो 500 पाउंड गोश्त लेकर के हम लोग मन्ना फूड में ले गए कि भाई हमारे पास तो गरीब लोग हैं नहीं, आपके पास है, आप इसको बांट दीजिए। तो मन्ना फूड वाले ने कहा, Never in the history of Manna Food anybody ever donated fresh meat to the poor people. You people are the first. वो हम बड़े खुश हुए अंदर से, तो आपकी दुआ से वो एक गाय से 17 गाय हो गई।
अच्छा,
मगर 17 गाय हमने यहाँ नहीं जबा की बल्कि 11 गाय जबा की और 7 गाय का पैसा जो था वो सीरिया भेजवा दिया हमने। यहाँ सीरियन हमारे बहुत दोस्त हैं तो वो बेचारे गरीबों में वहाँ पे सीरिया में बहुत गुर्बत बहुत है तो उनको मदद करने के लिए हमने पैसे अपने उनके उनको दे दिए। लेकिन जो 11 गाय की जबा की उसमें करीब 6,000 पाउंड हमें गोश्त मिला तो हमने 5-5 पाउंड की थैली बनवाई और करीब 1200-1300 फैमिलीज मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बोथ उसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट किया 2 दिन। बेसिकली रिफ्यूजीज में जो पेश चार्जेस काउंटी वगैरह में रहते हैं उनमें तमाम तकसीम करते हैं।
मैं यहाँ यही सवाल पूछने वाली थी आपसे तो फैर साहब के इस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल है सीरिया वगैरह में जो रेफ्यूजी कैंप हैं क्योंकि तो अकवामे मुत्तहिदा के पास फंड्स नहीं है, बार बार अपील कर रही है, तो अब आप लोग कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनके लिए रेफ्यूजीज के लिए?
हम इनके जो रेफ्यूजी के लिए हम देते हैं ना वो पिछले साल हमने जो 7 गाय का पैसा हमें मिला था ना तो वो 18 7 7 56 7 7 12 करीब $12,000 होता था लेकिन हम लोगों ने $8,000-$10,000 का चेक उनको दिया वहां पे ले जाने के लिए सीरिया में हेल्प करने के लिए। इसी तरीके से हम हर साल उनको $8,000-$10,000 का चेक देते हैं कि ये आप हमारी तरफ से हमारी कंट्रीब्यूशन दे दें जो हम काउंटी में करते हैं। सीरियंस खुद ऑन देयर ओन वो अलग फंड रेजर करते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
आपकी काउंटी में बल्कि मैरीलैंड में मुसलमानों की तादाद क्या है?
करीब 60-70 हज़ार।
इस वक्त रमजान के महीने में क्या आपका जो फाउंडेशन है क्या काम कर रही है?
अच्छा बेटा, रमजान के महीने में ये है कि हम लोग जो है ये इफ्तार करते थे वो कैंसिल हो गया तो इफ्तार का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। जो चैरिटी का काम होता है वो हमने 9 इस सैटरडे को 50 फैमिली करीब 50 फैमिली में ये है कि कुछ को एक डिब्बा मिलता है कुछ को 2 डिब्बा मिलता है। जो 5 मेंबर से ज़्यादा हो घर में तो उनको 2 डिब्बे फूट के मिलते हैं तो करीब 70 डिब्बे हमें बनते हैं हमारे दफ्तर में और वो सारे लोग आते हैं और वो सामान ले जाते हैं खाने पीने का इफ्तार का। तो ये तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है जो हम करते हैं लेकिन इस वक्त COVID-19 की वजह से हमारी जो फूड काउंसिल एक है काउंटी की वो अटेंड कर रहे हैं हम 3 हफ्ते से बराबर और हमको जो जो कहा जा रहा है हम वो काम कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या काम किया इस महीने में वो आपको बता दें।
लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइए कि जो आप इफ्तार के लिए देते हैं पैकेज एक बना के एक बास्केट तो उसमें क्या क्या होता है और कितने दिन के लिए होता है?
जो सामान देते हैं ये 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते तक का सामान होता है।
और क्या होता है उसमें?
इसके अंदर करीब 10-15 आइटम होते हैं। स्पेगेटी होता है, पास्ता होता है, राइस होता है, बीन्स होते हैं और मुख्तलिफ चाय होती है, मिल्क ड्राइड मिल्क होता है और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो लिस्ट पूरी हमें याद नहीं है लेकिन वो पूरी लिस्ट है हमारी जिसमें कि करीब पूरा डिब्बा भर जाता है और उससे ज़्यादा करीब 30-35 पाउंड सामान होता है उसके अंदर। ताकि हम ये सारा हमारा फ्राइडे को ये सारे डिब्बे बन जाएंगे सारी सैटरडे को एक बैच आता है जो डिब्बों को भरता है लेकिन अब चूंकि इस मरतबा वॉलेंटियर्स कोई नहीं आएंगे तो हमारी इम्प्लाईज आएंगे और प्लस हम 2 पेड वर्कर्स बुला लेते हैं। अफगान रिफ्यूजीज मिल जाते हैं $100-$100 में उनको सुबह से बुला लेते हैं शाम तक वो काम करते हैं तो वो डिब्बे भी बनाते हैं उसको फिलअप भी करते हैं और फिलअप करके रख के चले जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग 12 बजे से आना शुरू करते हैं 4 बजे तक आते हैं और अपना नाम लिखाते हैं और डिब्बे उनको हम दे देते हैं और वो ले जाते हैं अपनी गाड़ी में रख करके ले जाते हैं। ये तो हमारे दफ्तर से हर महीने 50-60 फैमिलीज को खाना जाता है।
अभी रमजान में तो आप मुसलमान खानदानों को दे रहे होंगे?
ये हमारे सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबको जा रहे हैं। मुसलमानों को ICM और MCC दे रही है और हमको जो हमें अभी हमको इत्तेफाक से 400 खाना मिल गया جو ہمارے ایئر لائن انڈسٹری نیو یارک سے جو جہازوں میں کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, تو جہاز تو سارے کینسل ہو گئے, وہ کھانا سارا سرپلس ہو گیا, تو قریب 700 فوڈ فروزن فوڈ جو کھانا جہازوں میں دیا جاتا وہ ہمارے واشنگٹن میں ہمارے کاؤنٹی میں آ گیا. تو انہوں نے ہم کو بلا کے کہا کہ اب تو پھر آپ یہ لے جائیں سارا اور ڈسٹریبیوٹ کر دیں اپنی کمیونٹی میں. لوگوں نے ٹیسٹ کیا, کہنے کا بہت اچھا کھانا ہے, یہ ایئر لائن کا کھانا ہے جو پیسنجر کو ملتا, یہ وہ کھانا بنایا تھا ان لوگوں نے. تو اس کو ہم نے سارے آئی سی ایم میں بٹوا دیا مسلمانوں کا, چونکہ سب حلال میٹ تھا وہ, تو ہم نے سب آئی سی ایم کو دیا کہ تم اپنے لوگوں کو تقسیم کر دو. تو وہ وہاں پہ تقسیم ہو گیا. ایک اور پھر 100 کھانا ہم نے وہاں پہ ٹکوما پارک جو ہمارا غریب ایریا ہے کاؤنٹی کا, اس میں سینئر لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں, 100 کھانا ہم نے وہاں پہنچا دیا, وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو میل پریپیئرڈ میل کا کھانے کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں.
تو اس میں پھر آپ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو بھی آج کل احکامات ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے, تو آپ یہ سارے گیئر وغیرہ بھی پی پی جو کہلاتے ہیں یہ سب دیتے ہیں اپنے والنٹیئرز کو یا امپلائیز کو؟
سب ساری پرووائڈ کرتے ہیں, ڈسٹینسنگ بھی کرتے ہیں, ان کا ہاتھ بھی دھلواتے ہیں, ان کا منہ دھلواتے ہیں, ان کو ہر چیز کی احتیاط جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اپنے دفتر میں اس وقت اپنے والنٹیئرز کو نہیں بلا رہے ہیں, اسی لیے ہم نے اپنے ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ ہے اور ہمارے دو امپلائی ہیں, دونوں ماسک پہنتے ہیں, دونوں گلو پہنتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
اچھا, تو ویسے کیا آپ کے پورے میری لینڈ میں اور بالخصوص آپ کی کاؤنٹی میں منٹگومری کاؤنٹی میں لوگ پابندی کر رہے ہیں یہ جو کچھ بھی احکامات ہیں آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟
ہم لوگ تو کر رہے ہیں, ہمارے بچے کر رہے ہیں بہت سختی سے, یعنی کہ کسی طرح سے ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کہنے کے لیے سوٹر بھی پہنے آپ سوٹر بھی پہنے اور تب باہر نکلے, ٹھنڈک میں نہیں باہر نکلی اس کا, اسے کیا پتا کہ میں ابھی ٹہل کے آ رہا ہوں باہر. کاش یہ ہمارے سارے لوگ بچے میں دیکھ بچوں پہ ٹائم کریں, بس ہم نے سارا بد بچوں پہ سب کیا ہے.
بالکل, تو یہ بتائیے مجھے, تو فیض صاحب کی شروع میں جہاں بات ہوئی تھی کہ آپ نے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے لیے کام شروع کیا, تو اب آپ ہیں سیاست سے کس طرح وابستہ ہے, کبھی آپ نے کوئی الیکشن لڑا یا خالی ایکٹیویسٹ ہیں؟
اب اچھا نہیں اس کو ختم کر دوں میں, تو یہ ایم سی ایم ایف میں پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ تو بتا دیا آپ کو, فوڈ کا اور کھانا کھلانے کا اور کرسمس گفٹ باسکٹ کا اور تھینکس گیونگ کا اور اپنے افطار کا اور یہ گوشت بانٹنے کا, یہ پانچ کام جو ہیں یہ چیریٹی کے کام ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
اس کے بعد ہم اپنے سینئر سٹیزنز کا پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ہفتے میں 2 دن یہ لوگ دفتر میں آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے, کھانا پینا بھی ہوتا ہے, لوگ اپنے گھروں سے بھی لاتے ہیں, کچھ باہر سے بھی ہم منگا لیتے ہیں, تو اس طرح 2 دن اس میں گزر جاتے ہیں. تیسرا ایک پروگرام ہم لوگوں نے یوتھ کے لیے کاؤنٹی, یعنی یہ کاؤنٹی نے سب کچھ کیا, کاؤنٹی نے ہم سے کہا کہ تمہارے یوتھ تمہاری بڑی مدد کرتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, فوڈ جمع کرتے ہیں, تو ان کے لیے تم کچھ کرو, تو ہمیں $5,000 دیے. تو ہم نے یوتھ کے لیے ایس اے ٹی کی کلاس کر دی, یوتھ کے لیے پبلک اسپیکنگ کی کلاس کر دی, ان کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کلاس کر دی, ایسے رائٹنگ کی کلاس کر دی, اس طرح سے $5,000 ان کے ہم نے خرچ کر دی ان کے اوپر. پھر انہوں نے 5,000 to 8,000 کر دیا, پھر 8 سے اس سال 12,000 کر دیا. تو اب ان کے لیے پروگرام ہم نے مختلف پروگرام بنا بنا کر کے ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں. تو 14, 15, 16 یعنی بچے جو ہیں اس ایٹی کے کلاس میں اور مختلف پروگرام میں آ جاتے ہیں. پھر ہمارے دفتر میں ایک کوڈنگ کلاس شروع ہو گئی جو بچوں کو کمپیوٹر میں, 28 بچے اس میں آتے ہیں اور ان کی ہر سٹرڈے کو کوڈنگ کلاس ہوتی ہے. اس طریقے سے بچوں کا بھی ہے, بوڑھوں کا بھی ہے اور جوانوں کا بھی ہے, سارے لوگوں کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں.
سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی آپ کی پروگرام, کون سا سب سے پسندیدہ آپ کا؟
سب سے پسندیدہ تو میرا قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے نا, اٹ از ویری امیزنگ. कि ट्रक में भरे हुए गोश्त ले जा रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं।
अच्छा, लोगों को बड़ी हैरत होती है, आपको भी तजुर्बा हुआ होगा, कि इंडिया में या पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में लोग समझते हैं कि अमेरिका में कोई गरीब नहीं होता।
गरीब इस इलाके में जो है वो कौन है? मोस्टली वो है जो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन है। दे आर द मोस्ट, यानी के पढ़े भी कम है, नौकरी भी कम मिलती है, मर भी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि सारे लो पेइंग जॉब्स जो हैं वो यही कर रहे हैं। अस्पतालों में क्लीनर यही हैं, जो हिस्पैनिक हैं वो भी यही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिसएडवांटेज लोग कौन हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं हमारे, ये जो हमारे यहाँ सुबह कचरा उठाने वाले जो सुबह आते हैं, ये कौन हैं? कितनी गंदगी सब घर की उठा के ले जाते हैं, आखिर ये भी तो काम करते हैं और गरीब लोग हैं। ये डीसी पूरा भरा हुआ है गरीब लोगों से। तो कहने का मतलब ये है कि पैमाने इनके अलग अलग हैं। और फिर यहाँ पे एक मामूली आदमी भी जो है ना, वो हैंड टू माउथ रहता है, हफ्ते हफ्ते काम करते हैं और दो दो हफ्ते के बाद तनख्वाह मिलती है, महीने के बाद मिलती है, हैंड टू माउथ रहते हैं। अगर नहीं मिलती तो क्या खाएंगे? अमेरिका हिंदुस्तान में तो हमें याद है कि अब्बा कमाते थे और आठ आदमी खाना खाते थे घर में, सारे लोग मोहल्ले के आ जाते थे जो बेचारे बेकार होते थे। लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ तो कोई किसी के घर नहीं दाखिल हो सकता है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है और हर आदमी मैनेज करता है अपने अफेयर्स को खुद ऑन देयर ओन।
मुझे तो इतना बुरा लगता था तो फैज साहब, जब मैं शुरू में आई थी, जब खाना फेंका जाता है, क्योंकि अमेरिका में आपको समझ नहीं आता कि बचा हुआ खाना क्या करें, कभी भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ये मसला नहीं होता, कम हो जाता है, कोई ना कोई खाता है उसको, और ये बहुत ही अच्छी बात है।
वो हांडी पोछने का रिवाज था ना,
जी
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
और अब न्यूयॉर्क में जिंदगी किस तरह मामूल पर आएगी, क्या सूरत हाल है, लॉकडाउन की क्या सूरत है, इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट सुना रही है मुदस्सरा मंजर।
अमरीका में तिब्बी माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगरचे कई रियासतों ने लॉकडाउन की पाबंदियां नरम करके बास कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है, मगर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों और मौत का शिकार होने वाले अफराद की तादाद में कमी वाकई नहीं हुई। बुध के रोज़ भी अमेरिका में कोविड 19 के मरीजों की तादाद 12 लाख से ज़्यादा और अमवात 71,000 से ज़्यादा है। इसी दौरान अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर अपने यहाँ लॉकडाउन ख़त्म करने के मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। न्यूयॉर्क अमरीका में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में सर फहरिस्त है। माहरीन इसकी कई वजूहात बताते हैं। न्यूयॉर्क गुंजान आबाद है, यहाँ के बैन अलावामी एयरपोर्ट कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद खुले रहे। इसका जेर ज़मीन रेल का निज़ाम या सबवे सिस्टम जल्द बंद न किया जा सका। इसकी आबादी में तनाव बाकी रियासतों से ज़्यादा है और इसी तरह के दीगर हकाई कोरोना वायरस की वबा में भी मुंतजमीन के आड़े आए और नतीजा ये कि अमरीका की दीगर रियासतों के मुकाबले में न्यूयॉर्क में कोविड 19 के मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा रही और इस हिसाब से अमवात भी हुई, मगर फिर इसमें कमी देखी जाने लगी और एक वक्त आया कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने इस उम्मीद का इजहार किया कि न्यूयॉर्क को मई के महीने के वस्त में मरहलावार खोला जा सकता है। पहले मरहले में तामीराती कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों को काम शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी और रिटेल स्टोर भी खुल जाएंगे, मगर ग्राहकों को अशिया सड़क किनारे मुहैया की जाएंगी कर्ब साइड पिकअप के जरिए। अमेरिका की जिन रियासतों में कोरोना वायरस ज़्यादा फैला वहाँ डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है और गवर्नर भी डेमोक्रेट हैं। इनमें न्यूयॉर्क के अलावा कैलिफोर्निया और शिकागो ऐसी रियासतें हैं जहाँ कोविड 19 के मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा रही। डॉक्टर सुहेल चीमा न्यूयॉर्क में मुमताज माहिर नफ्सियात हैं और रियासती उमूर पर भी उनकी गहरी नज़र है। वो कहती हैं कि हकीकत ये भी है कि इन रियासतों में कारोबार के मौके भी सबसे ज़्यादा हैं और गैर मुल्कियों की आमद और रफ्त भी यहाँ ज़्यादा होती है। वो कहते हैं इसी हिसाब से कोरोना वायरस की वबा की इब्तदा में चीन और यूरोपीय ममालिक से लोगों की आमद और रफ्त भी यहाँ ज़्यादा रही।
کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے نیو یارک، کیلیفورنیا یا شکاگو، یہ وہ ریاستیں ہیں جو کہ امریکہ کی سب سے زیادہ ایفلوئنٹ اور رچ اسٹیٹس ہیں، یہاں پہ بزنسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہوا کیا کہ چائنیز ٹریولر یہیں پر زیادہ ہے، جب یہاں پہ چائنیز ٹریولر زیادہ ہے تو پینڈیمک کا زور بھی انہی ریاستوں میں زیادہ ہوا.
نہ صرف بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد بلکہ نیو یارک میں عام ٹریفک بھی باقی ملک سے کہیں زیادہ رہتی ہے. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں 500 سے زیادہ زیر زمین ریل یا سب وے اسٹیشن ہیں اور ان میں 50,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے چلنے والی اس سروس کی دن رات صفائی کی جا رہی ہے اور اسے جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے تاکہ اسے عام لوگوں کے لیے کھولا جائے تو کوئی خطرہ نہ ہو. تاہم COVID-19 کی وبا کا زور خاص طور پر نیو یارک میں لوگوں کے لیے سخت ذہنی دباؤ کا باعث بنا اور اب بھی نیو یارکر اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کی ریاست اتنی تاخیر سے کیوں کھل رہی ہے. اس کی وجہ ڈاکٹر سہیل کے نزدیک مالی سے زیادہ معاشرتی ہے، کیونکہ معاشرتی فاصلہ اور ماسک پہننے کی ضرورت جلد ختم نہیں ہوگی اور لوگ انہی پابندیوں کے ساتھ اپنی آزادی کے عادی ہو جائیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سمین، اب کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی رپورٹیں جو پاکستان سے اور انڈیا سے ہمارے رپورٹرز نے بھیجی ہیں، یہ دلچسپ رپورٹیں ہیں، تھوڑا سا آپ کا مزاج بھی تبدیل ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگے گا. لیجیے سنتے ہیں. پہلے عمر فاروق، جو شادی بیاہ کا جو کاروبار ہے اس میں جو زوال آیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کی بات کر رہے ہیں.
پشاور کے ذیشان طاہر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ کرونا وائرس آیا اور ساری تیاریوں پر پانی پھر گیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریبات پر پابندی لگ گئی، شادی ہالز بند کر دیے گئے، تو ذیشان کو بھی شادی کی تقریب منسوخ کرنا پڑی. آج وہ شادی ہال کی بکنگ کے لیے دیا گیا ایڈوانس واپس مانگنے آئے ہیں.
میرے تو بہت نقصان ہوئے، جیسے فرنیچر وغیرہ اور گھر میں سب کارڈ میں نے چھپوائے ہیں، سارے مہمانوں کو میں نے بلایا تھا تو وہ آ گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو نقصان ہوئے ہیں وہ تو صرف مجھے ہی پتہ ہے اور میری فیملی کو پتہ ہے. ابھی تو جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تب شادی ہوگی نا، ابھی لاک ڈاؤن تو ختم ہی نہیں ہو رہا.
اس پریشانی میں ذیشان اکیلے نہیں. پشاور سٹی شادی ہال ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ 2 مہینوں میں 2,000 سے زائد شادیاں کینسل ہو چکی ہیں. بہت سے لوگ شادی ہال کی بکنگ کے لیے دیا گیا ایڈوانس واپس لینے کے مطالبے کے ساتھ آ رہے ہیں.
8-8, 10-10 فنکشن آپ ایک ایک ہال کا لگا لیں تو یہ آپ ایوریج دیکھنے کی، یہ 8-10 فنکشن ایک ہال کا، تو یہ 150 شادی ہالوں کا پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو کاروبار بند پڑا ہوا ہے اس سے کتنا لاس ہوا ہے.
شادی ہالز بند ہونے کی وجہ سے اس کاروبار سے منسلک چھوٹے مزدور بھی متاثر ہو رہے ہیں.
ہمارے پاس جو بھی ویٹر ہیں، لیڈیز ویٹر ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ ڈش واشر ہیں، اسٹاف ہیں ہمارا، مینیجر وغیرہ سارا اسٹاف ہیں، سارا متاثر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ابھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں آگے معیشت آپ کو پتہ ہے اور کاروبار آپ کو پتہ ہے، نوکریوں کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بیچارے تو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں.
ہمارا کام جو ہے وہ شادی ہال کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شادی ہال اس وقت بند ہے جی، اور گیدرنگ وغیرہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا جی، بس ہم ایسے بس
ذیشان طاہر کو ہال بکنگ کی ایڈوانس رقم ہال انتظامیہ نے واپس نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈوانس رقم وہ خرچ کر چکے ہیں.
ادھر میں آیا ان کو بتانے کہ مجھے اپنے پیسے واپس کر دیں آپ، اور انہوں نے آگے سے کہے کہ جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جتنے پیسے آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے آگے کرایوں میں دے دیا ہے اور جو ویٹرز ہیں ان کو ورکروں میں دے دیا ہے.
شادی ہال مالکان کا کہنا ہے کہ اس بحران میں ہالوں کے کرائے اور بجلی کے بل ادا کرنے کے حوالے سے حکومت کوئی پالیسی وضع کرے تاکہ اگلے شادی سیزن کی آمد تک وہ اپنے انتظامات چلانے کے قابل ہو سکے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
حالیہ چند ہفتوں میں 3 کروڑ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد نے بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں جمع کرائی ہیں. जिसके बाद शुमाली कैलिफोर्निया में अल्मेडा काउंटी फूड बैंक ने मकामी सतह पर बढ़ जाने वाली जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियत में इजाफा किया है।
आटा, प्याज, सेब और नाशपाती जैसे खाने की आम अशिया, ऐसी चीजें जो वो खुद खा सकते हैं, और वो सिर्फ डब्बे की चीजें नहीं, बाज़ औक़ात हम दूध भी मुहैया करते हैं, जो अच्छी बात है। हमारे पास तरह तरह की अकसाम है।
आमतौर पर जब हम खाना तकसीम करना शुरू करते हैं तो 40 से 50 के दरमियान कारें पहले ही हमारे दरवाजे खोलने की मंतजर होती हैं। हमारी इमरजेंसी फूड हेल्प लाइन कॉल का हजम कहीं ज्यादा हो गया है। कॉल्स की शरह 1000% रोजाना से ज्यादा हो चुकी और ये अभी जारी है। हमें अभी भी रोजाना 100 से 200 कॉल्स आ रही है। रोजाना की बुनियाद पर हमारे पास पहुँचने वाले तकरीबन 50% लोग पहली बार हमसे राब्ता कर रहे होते हैं।
फूड बैंकों ने जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। उन्हें इसके लिए माली मदद सरकारी और निजी एहतियात से हासिल होती है।
हम माजी से कहीं ज्यादा खुराक तकसीम कर रहे हैं। पिछले ही महीने ये मकदार गुज़िश्ता साल के इस माह के मुकाबले में 20% ज्यादा रही। चूँकि हम थोक में चीजें खरीदते हैं तो हम इंतहाई कम कीमत में बड़ी मकदार खरीद पाते हैं, लिहाजा एक छोटा सा चंदा भी बहुत ज्यादा खुराक मुहैया करने का जरिया बन जाता है।
ये राबता किए बगैर ये सहूलत दे रहे हैं। क्लाइंट को अपनी गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं, कम से कम बात करना और कम से कम मालूमात ली जाती हैं। सारी मेहनत हम ही करते हैं। हम इनके लिए खाना खुद उनकी गाड़ियों में डाल देते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाता है, लिहाजा वो खाना लेकर जा सकते हैं। इन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इन्हें वाकई में अच्छा खाना मिल जाता है और ये महफूज है।
ये बहुत मुतासिर कुन मरहला रहा है। हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं जो पहली बार हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग जो घंटे के हिसाब से काम करते थे या वो लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं और वो नहीं जानते थे कि मदद के लिए कहां जाना है।
और इस फूड बैंक को तवक्को है कि लोगों की तादाद बढ़ती रहेगी।
हम माजी के तजुर्बात से जानते हैं कि एक बार शेल्टर इन प्लेस के अहकाम नाफिज हों तो कुछ मुतासर लोगों को अगर साल नहीं तो कई महीने जरूर लग सकते हैं अपने पाँव पर दोबारा खड़े होने में।
अमले ने जोर दिया है कि यहाँ गजाई एहतियात वसूल करने के अहल होने के लिए आपको जरूरत यहाँ सिर्फ आने की है, मदद हासिल करने के लिए किसी और अहलियत की जरूरत नहीं है। टियाना मिचेल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के नए सिपाही, टैटू पार्लर्स। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। आप जानते हैं कि जिल्द पर नाम या कोई नक्श गुदवाने के अमल को टैटू कहा जाता है। अमेरिका में ये रिवाज नया नहीं है। पहले तो ये जंग पर जाने वाले फौजियों, मल्लाहों, बाइकर्स और ट्रक ड्राइवरों से मंसूब था, लेकिन फिर ये उस एज ग्रुप में मकबूल होना शुरू हो गया जो किसी भी ट्रेंड को आसमान पर चढ़ा सकते हैं, यानी टीनेजर्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र के हर 3 में से 1 अमरीकी जिस्म पर टैटू मौजूद है। मकबूलियत के साथ साथ शहरों के फैशनेबल इलाकों में इंतहाई महंगे टैटू पार्लर्स खुलने शुरू हो गए, जिन्हें बहुत से जवाबित पर अमल करने की सूरत में ही लाइसेंस मिलता है। ये और बात है कि तंगोतारी गलियों में अमेरिका में भी बहुत से पार्लर्स गैर कानूनी तौर पर यही काम करते हैं। बहरहाल, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। COVID-19 ने ये तो वाजे कर दिया कि अमरीका में कोरोना वायरस जैसी इमरजेंसी से निपटने के लिए हंगामी नौइयत के बुनियादी टिब्बी साजो सामान की कमी है, जैसे महफूज रखने वाले मास्क, दस्ताने और गाउन। अमेरिका में एक बात ये भी है कि लोग तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर नहीं डालते, बल्कि खुद भी रजाकार तौर पर काम करते हैं और बहुत सी रजाकार तंजीमें हैं जो इसमें उनकी मदद करती हैं। मेडिकल कम्युनिटी ने अब इन चीज़ों के हुसूल के लिए टैटू पार्लर से रابطہ करना शुरू किया है, क्योंकि उस सनत में भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन पार्लर्स में हैवी ड्यूटी मास्क, दस्ताने और गाउन वाफिर मकदार में स्टॉक होते हैं। रियासत अलबामा के शहर बर्मिंगम में ऐसे ही एक पार्लर का नाम है Cloud 9। इसके मालिक कैरी हैनिंग हैं। उनका कहना है कि एक मकामी अस्पताल ने उनसे रابطہ किया और बताया कि उन्हें प्रोफेशनल गाउन्स, दस्तानों और मास्क की अशद ज़रूरत है। कैरी ने एक लम्हा सोचे बगैर हामी भर ली। वो कहती हैं कि हम अपने अस्पतालों और कारकुनों की जो भी मदद करेंगे वो हर एक की मदद होगी, یہ چیزیں ہمارے ہیلتھ ورکرز کو صحت مند رکھیں گی اور بیماری کی صورت میں وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ دوسری طرف ایمرجنسی میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں معمول کے حالات کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ان اشیاء کی ضرورت ہے۔ بقول ان کے، ہر مریض کی آمد پر صرف ڈاکٹروں کو ہی نہیں بلکہ نرسنگ اور ٹیکنیکل اسٹاف کو بھی ان حفاظتی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چوکسی ہی بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتی ہے۔ شہناز عزیز کی جانب سے اپنے تمام سننے والوں کو خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور